एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिनकी आंखें, मतलब जिन्होंने पर्दे पर हमें मोह लिया है।
हाँ बिल्कुल, आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन पर्दे के पीछे का इंसान वो काफी हद तक एक पहेली रहा हमेशा।
सही, हम बात कर रहे हैं अल पचिनो की और उनकी आत्मकथा सोनी बॉय अ मेमोआर, जो 2024 में आई। इसका इंतजार तो मतलब बहुत लोगों को था।
बिल्कुल, अल्फ्रेडो जेम्स पचिनो 1940 में जन्म। वो सिर्फ एक एक्टर या फिल्म मेकर नहीं है, वो हॉलीवुड के सबसे क्या कहते हैं सम्मानित और शायद सबसे रहस्यमय लोगों में से हैं।
हाँ, वो किरदार माइकल कॉर्लियन, टोनी मोंटाना, सर्पिको, ये तो अमर हो गए, पर इनको जीने वाला इंसान वो हमेशा थोड़ा सा पर्दे के पीछे ही रहा।
और शायद यही बात इस किताब को खास बनाती है। ये सिर्फ कोई सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है, ये एक कलाकार का अपने अंदर झांकने का, आत्मविश्लेषण का एक गहरा काम है।
और कमाल की बात यह कि पचिनो ने सालों तक, मतलब दशकों तक, अपनी कहानी लिखने से परहेज किया और अब पहली बार खुलकर सामने आए हैं।
हाँ, और किताब का नाम भी देखिए, सोनी बॉय, ये उनके बचपन का निकनेम था,
है ना?
ये नाम सुनते ही लगते हैं जैसे हम सीधे ब्रॉन्क्स की उन गलियों में पहुंच गए जहां से सब शुरू हुआ।
बिल्कुल।
और ये सिर्फ ब्रॉन्क्स से हॉलीवुड तक का सफर नहीं है, ये कहानी है अपनी असलियत को बचाने की, कला के लिए जुनून की और जिंदगी की उलझनों को समझने की।
आज के जमाने में जहां शोहरत अक्सर मतलब दो पल की होती है, वहां पचिनो की कहानी कारीगरी, सालों की मेहनत और अपनी कला के प्रति ईमानदारी की बात करती है।
हाँ, तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं, उनके जीवन में उतरते हैं।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। जन्म ईस्ट हार्लेम में, पर परवरिश हुई साउथ ब्रॉन्क्स में, सिसिलियन अमेरिकन माता पिता।
और एक बात जो शायद बहुत अहम थी, जब वो सिर्फ 2 साल के थे, उनके पिता साल पचिनो परिवार छोड़कर चले गए। ये एक ऐसा घाव था जो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहा।
तो उनका ज्यादातर बचपन माँ रोज और नाना नानी केट और जेम्स गिराड़ी के साथ बीता।
हाँ, माँ का असर बहुत गहरा था, एक मजबूत लेकिन वो कहते हैं अंदर से नाजुक शख्सियत थी वो। और नाना जेम्स जो सिसिली के कोरिलियन गांव से थे, वो प्लास्टर का काम करते थे।
अच्छा।
हाँ, और वो पचिनो के पहले कहानी सुनाने वाले गुरु थे, वो कहानियों को एक्टिंग के साथ सुनाते थे। शायद वहीं से वो एक्टिंग का कीड़ा
मन में बैठ गया होगा।
हाँ, और सोनी बॉय नाम भी वहीं से मिला उन्हें।
और ब्रॉन्क्स का माहौल कैसा था? गरीबी तो थी पर
गरीबी थी लेकिन पचिनो कहते हैं कि वहां प्यार था, जिंदा दिली थी। गरीबी ने उन्हें कड़वा नहीं बनाया बल्कि एक तरह की मजबूती दी।
और वो फिल्में बहुत देखते थे, है ना? और फिर घर आकर नानी के लिए एक्ट करते थे।
बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ब्रॉन्क्स की गलियां ही उनका पहला स्टेज थी। वहीं उन्होंने लोगों को देखना सुनना सीखा और शायद खुद को बचाने के लिए अलग अलग परसोना बनाना भी सीखा।
स्कूल में तो काफी दिक्कतें थी उन्हें।
हाँ, डिस्लेक्सिया था, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन स्कूल के नाटकों में उन्हें अपनी जगह मिली। एक ऐसी दुनिया जहां उनकी वो बेचैनी, लोगों को ऑब्जर्व करने की आदत, वो काम आई।
अब फिर 17 की उम्र में हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स छोड़ दिया।
हाँ, ड्रॉप आउट हो गए। इसके बाद के साल वो जंगल के साल कहते उन्हें।
जंगल के साल मतलब
छोटे मोटे काम किए, चौकीदार, मैसेंजर, सिनेमा हॉल में अशर, ग्रीनविच विलेज में बोहिमियन जिंदगी, कभी दोस्तों के सोफे पर सो गए, कभी थिएटर में ही रात काट ली।
और पूरा ध्यान था ऑफ ब्रॉडवे थिएटर पर। ये ऑफ ब्रॉडवे मतलब वो छोटे एक्सपेरिमेंटल थिएटर होते हैं ना?
हाँ बिल्कुल,
यहाँ नया बोल्ड थिएटर हो रहा था न्यूयॉर्क में।
यही उनकी मुलाकात चार्ली लॉटन से हुई, हबर्ट बर्ग ऑफ स्टूडियो में। वो उनके पहले अहम गुरु बने।
अच्छा।
उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना, तराशने में मदद की, लेकिन पचिनो की नजर थी एक्टर स्टूडियो पर।
हाँ, वो तो उस वक्त एक्टिंग का मक्का माना जाता था।
बिल्कुल, कई बार रिजेक्ट हुए। आखिरकार 1966 में 26 साल की उम्र में उन्हें वहां एडमिशन मिल गया।
एक्टर स्टूडियो और ली स्ट्रासबर्ग, ये तो उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा।
बहुत बड़ा। स्ट्रासबर्ग ने उन्हें मेथड एक्टिंग सिखाई। ये सिर्फ एक्टिंग का एक तरीका नहीं था, ये एक अनुशासन था, अपनी भावनाओं की गहराई तक उतरने का रास्ता।
मेथड एक्टिंग यानी किरदार को जीने के लिए अपनी निजी भावनाओं, यादों का इस्तेमाल करना।
हाँ बिल्कुल, पचिनो एक्टर स्टूडियो को अपनी असली यूनिवर्सिटी कहते हैं। यही उनकी जो वो रॉ टैलेंट था ना, उसे सही दिशा मिली
और मेहनत रंग लाने लगी। ऑफ ऑफ ब्रॉडवे में नाम बना। 1968 में द इंडियन वांट्स द ब्रॉन्क्स के लिए ओबी अवार्ड मिला।
हाँ, मतलब न्यूयॉर्क थिएटर में वो पहचाने जाने लगे थे, एक उभरते सितारे थे।
फिर फिल्मों में कैसे आए?
बड़ा ब्रेक मिला 1971 में द पैनिक इन नीडल पार्क से। इसमें उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट का रोल इतनी सच्चाई से किया कि फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की नजर उन पर पड़ी।
और यहीं से द गॉडफादर की कहानी शुरू हुई।
बिल्कुल,
द गॉडफादर। कोपोला तो उन्हें माइकल कॉर्लियोन के रोल में लेना चाहते थे, पर स्टूडियो वो राजी नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं। पैरामाउंट स्टूडियो रॉबर्ट रेडफोर्ड या रायन ओ'नील जैसे चेहरे चाहता था। ये छोटे कद का थिएटर वाला एक्टर जो थोड़ा धीरे बोलता था, उन्हें जमाने।
उन्हें लगता था कि ये माइकल का रोल नहीं कर पाएगा।
हाँ, पचीनो खुद बताते हैं कि शूटिंग के दौरान उन्हें हर रोज लगता था कि आज निकाल दिया जाएगा। कोपोला को रोज स्टूडियो से लड़ना पड़ता था उन्हें बचाने के लिए।
बाप रे, सोचकर ही लगता है। पर कोपोला अड़े रहे।
हाँ, और पचीनो ने भी माइकल के किरदार को सिर्फ गैंगस्टर नहीं समझा, उन्होंने उसे एक ट्रेजिक हीरो की तरह देखा जो अपनी किस्मत के बोझ तले दबा है।
और कहते हैं मार्लन ब्रांडो ने भी एक बार बस सिर हिला के हौसला दिया था।
हाँ, बिना कुछ कहे एक नए एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात होगी।
बिल्कुल। और 1972 में द गॉडफादर की कामयाबी, उसने तो सब कुछ बदल दिया।
रातों रात दुनिया भर में मशहूर। लेकिन ये शोहरत एक तूफान की तरह आई। वो अचानक एल पचीनो ग्लोबल सुपरस्टार बन गए, पर अंदर से वो अब भी ब्रॉन्क्स वाले सोनी बॉय थे।
एक तरह का पहचान का संकट।
हाँ बिल्कुल, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में कौन है। शोहरत ने चीजें आसान नहीं की।
बस 70 का दशक तो उनके लिए कमाल का रहा। सरपिको, डॉग डे आफ्टरनून एंड जस्टिस फॉर ऑल, 5 साल में 4 ऑस्कर नॉमिनेशन।
हाँ, वो शिखर का दौर था। मुश्किल थिएटर रोल और बड़ी फिल्मों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन 80 का दशक थोड़ा मुश्किल रहा उनके लिए।
हाँ, कुछ फिल्में नहीं चली, खासकर 1985 में रेवोल्यूशन की बड़ी नाकामी। उसके बाद तो उन्होंने फिल्मों से लगभग 4 साल का ब्रेक ही ले लिया।
4 साल, वो इसे अपना दूसरा जंगल कहते हैं शायद।
हाँ, इस दौरान वो वापस थिएटर में लौटे और अपने एक पैशन प्रोजेक्ट द लोकल स्टिग्मैटिक पर काम किया। ये काफी डार्क और नॉन कमर्शियल फिल्म थी।
और फिर वापसी हुई। और क्या वापसी हुई, देर 80s और 90s में फिर छा गए।
और आखिरकार 1993 में 7 नॉमिनेशन के बाद सेंट ऑफ अ वूमन के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर।
7 बार चूकने के बाद जीतना, वो लम्हा तो कमाल का रहा होगा।
यकीनन, उनके बाद की जिंदगी में पिता बनना एक अहम पड़ाव रहा। 1989 में बेटी जूली मैरी, फिर 2001 में जुड़वा बच्चे एंटन और ओलिविया।
इस अनुभव ने उन्हें अपने पिता की कमी वाले बचपन से जोड़ा होगा शायद।
हाँ, उन्होंने इस बारे में लिखा है। किताब के आखिर में वो बढ़ती उम्र, मौत और अपनी विरासत के बारे में सोचते हैं, पर कला के लिए उनका जुनून, उनकी वो जिज्ञासा, वो कभी कम नहीं होती।
ये तो हुई उनकी जीवन की कहानी, पर इस कहानी के पीछे का इंसान कैसा है, उनका सोचने का तरीका, उनका दर्शन क्या है?
देखिए, पचीनो के लिए एक्टिंग सिर्फ नकल उतारना या दिखावा नहीं है, ये छुपे हुए सच को ढूंढना और सामने लाना है।
वो मानते हैं कि किरदार कोई भारी पोशाक नहीं, बल्कि अपने ही अंदर का कोई अनदेखा पहलू है।
बिल्कुल, इसीलिए वो निजी क्षणों, प्राइवेट मोमेंट्स की बात करते हैं, यानी सबके सामने होते हुए भी अपनी सच्ची निजी भावना तक पहुंच पाना।
उनका नजरिया हमेशा एक बाहरी आदमी का रहा है, शायद ब्रॉन्क्स की वजह से।
हाँ, लगता तो यही है। वो हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों, बागियों के करीब महसूस करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो सबसे बुरे दिखने वाले किरदारों में भी इंसानियत ढूंढें।
और उनकी प्रेरणा क्या, वो शोहरत थी, पैसा था?
लगता नहीं। किताब पढ़कर लगता है कि उनके लिए एक्टिंग खुद को व्यक्त करने की एक गहरी जरूरत थी, एक तरह की मजबूरी। शुरू में तो शायद मुश्किलों से भागने का एक जरिया भी।
और उनकी माँ रोज, उनका जिक्र बार बार आता है।
हाँ, बहुत गहरा असर था उनका। रोज की मौत तब हुई जब पचीनो 22 साल के थे, ठीक उनके करियर के शुरू होने से पहले। हाँ, पचीनो मानते हैं कि उनके बहुत सारा काम अपनी माँ की याद में है, जैसे वो उन्हें दिखा रहे हों, देखो मैंने क्या किया। वो उन्हें अपनी कामयाबी दिखाने के लिए जिंदा नहीं थी, तो शायद उनका सारा काम ही माँ के लिए एक श्रद्धांजलि है।
ये तो बहुत भावुक कर देने वाली बात है। और कला के लिए उनकी वो न खत्म होने वाली जिज्ञासा, हमेशा सीखते रहना।
हाँ, जैसे शेक्सपियर पर लुकिंग फॉर रिचर्ड बनाना, वो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे, और यही चीज उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है।
उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। अगर हमें 3 सबसे अहम मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
मेरे ख्याल से पहला तो यकीनन 1966 में एक्टर स्टूडियो में दाखिला मिलना।
हाँ, 2 बार रिजेक्ट होने के बाद।
हाँ, 26 साल की उम्र में ये सिर्फ एक प्रोफेशनल पहचान नहीं थी, ये उनके वजूद की पुष्टि थी। जैसे किसी ने कहा हो, हाँ तुम में वो बात है, एक बिखरी हुई प्रतिभा को पहचान मिली।
और इसने उन्हें बदला कैसे?
ली स्ट्रासबर्ग एक पिता समान बन गए। मेथड एक्टिंग ने उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और काबू करने का हुनर दिया। वो एक जंगली प्रतिभा से एक सचेत अनुशासित कलाकार बने। जैसा वो खुद कहते हैं, ये उड़ना सीखने जैसा था।
सही, उन्हें अपनी कला को संवारने के औजार मिले।
और दूसरा बड़ा मोड़, गॉडफादर।
हाँ बिल्कुल, 1971 में द गॉडफादर में कास्टिंग। जैसा हमने बात की, कोपोला ने स्टूडियो से लड़कर उन्हें चुना।
कलात्मक नजरिए और बिजनेस के दबाव की टक्कर।
बिल्कुल, हर रोज निकाले जाने का डर, कोपोला का उन पर अटूट भरोसा, उनकी जिंदगी बदलने वाला था।
और इसका नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये कि न्यूयॉर्क के थिएटर का एक जाना माना नाम रातों रात इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गया। ये बदलाव बहुत तेज था, चौंकाने वाला था।
वो माइकल कॉर्लियोन का दूसरा नाम बन गए। हाँ, जो उनके असल स्वभाव से बिल्कुल अलग था। इस रोल ने उनका करियर बनाया, पर एक सुनहरा पिंजरा भी बना दिया। उनकी जिंदगी गॉडफादर से पहले और गॉडफादर के बाद में बट गई।
और तीसरा निर्णायक मोड़, वो 80 के दशक वाला ब्रेक।
हाँ, मैं कहूंगी 1985 के बाद का दौर, जब रेवोल्यूशन फ्लॉप हुई और उन्होंने फिल्मों से 4 साल का ब्रेक लिया और द लोकल स्टिग्मैटिक पर काम किया।
ये एक तरह का मोह भंग था हॉलीवुड से।
हाँ, और ये जानबूझकर उठाया गया कदम था अपनी कला को बचाने के लिए, उन वजहों से दोबारा जुड़ने के लिए जिनके लिए उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी। कहानी कहना, सच ढूंढना, न कि सिर्फ स्टारडम।
तो इस ब्रेक ने, इस आत्मनिर्वासन ने उन्हें क्या सिखाया?
ये उनके लिए अपनी कला को फिर से ताजा करने का वक्त था। स्टारडम की मांगों से दूर होकर वो अपनी जड़ों से जुड़े। द लोकल स्टिग्मैटिक जैसी मुश्किल फिल्म बनाना वो अपनी कलात्मक आजादी को फिर से पाने जैसा था।
इसने उन्हें सिखाया कि हॉलीवुड के उतार चढ़ाव के बीच अपने अंदर के कलाकार को कैसे बचाए रखना है।
बिल्कुल, जब वो 1989 में सी ऑफ लव से वापस आए तो ज्यादा फोकस थे अपने काम पर, ज्यादा कंट्रोल के साथ।
पचीनो की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कामयाबी की कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कई गहरे सबक छुपे हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, पहला तो यही कि अपनी जड़ों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। पचीनो ने ब्रॉन्क्स वाले नजरिए को कभी नहीं छोड़ा।
दूसरा, लगे रहना, हार ना मानना भी एक प्रतिभा है। उन्होंने रिजेक्शन झेला, गरीबी देखी, नाकामी देखी, पर रुके नहीं। वो बस के किराए वाला किस्सा?
हाँ, कि पैसे नहीं होते थे पर एक्टिंग क्लास के लिए मीलों पैदल चलकर जाते थे।
ये बात भी कितनी अहम है कि बाहरी कामयाबी और अंदरूनी सुकून एक ही चीज नहीं है। शोहरत उनके अंदर के सवालों का जवाब नहीं दे पाई।
और सही गुरु का मिलना कितना जरूरी होता है। लॉटन, स्ट्रासबर्ग, इन लोगों ने उनकी जिंदगी बदल दी।
और ये कि सीखने या बदलने की कोई उम्र नहीं होती, देर से पिता बनना और उससे सीखना।
हाँ, और अपनी असलियत को बचाए रखना, मुश्किलों को हार मानने का बहाना नहीं बल्कि कुछ सीखने का मौका समझना। हर नाकामी एक सबक है।
आज के दौर में जहाँ मतलब सोशल मीडिया पर पल भर की शोहरत और बनावटी इमेज का जोर है, वहाँ पचीनो की कहानी कुछ और ही कहती है।
बिल्कुल सही, ये कहानी दशकों की कड़ी मेहनत, अपनी कला में महारत हासिल करने, असलियत पर टिके रहने और कला के प्रति ईमानदारी के महत्व को बताती है।
ये एक तरह से अपनी अंदर की आवाज सुनने की दावत है।
हाँ, जो आजकल के शोर शराबे में कहीं खो जाती है।
अगर हमें इस पूरी चर्चा से 3 खास बातें निकालनी हो, निचोड़ निकालना हो, तो वो क्या होंगी? चलिए एक भावनात्मक पहलू से शुरू करते हैं।
सबसे गहरी भावनात्मक बात तो उनकी माँ रोज के साथ उनका रिश्ता और उनकी कम उम्र में मौत का असर है। पचीनो का ये मानना कि उनकी सारी कामयाबी कहीं ना कहीं उस माँ को दिखाने की कोशिश थी जो उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रही, ये उनके जीवन और कला दोनों को एक दर्द भरी गहराई देता है।
और कोई बौद्धिक या सोचने वाली बात, एक इंटेलेक्चुअल इनसाइट?
वो मेथड एक्टिंग के बारे में उनकी गहरी समझ होगी। उनके लिए ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी बल्कि सच तक पहुंचने का एक अनुशासन भरा मुश्किल रास्ता था। एक्टर को, जैसा पचीनो कहते हैं, एक भावनात्मक एथलीट बनना पड़ता है।
अपनी जिंदगी के तजुर्बों को कच्चा माल बनाकर इस्तेमाल करना।
हाँ, ये एक्टिंग को एक गंभीर, सोचने समझने वाले काम के तौर पर दिखाता है।
और आखिर में एक ऐसी बात जो हम सबके लिए मायने रखती हो, एक यूनिवर्सल सबक,
वो है अपनी असलियत और अपनी कला के सच के प्रति वफादारी। ये हर चीज से ऊपर है, भले ही इसके लिए आपको कुछ वक्त के लिए कामयाबी या शोहरत से पीछे हटना पड़े, जैसा उन्होंने रेवोल्यूशन के बाद किया।
आपकी अपनी कीमत बाहरी तारीफ या कामयाबी से तय नहीं होती।
बिल्कुल, ये एक ऐसा सबक है जो जिंदगी के हर मैदान में हर इंसान के लिए जरूरी है।
वाकई, अपनी शर्तों पर जीना, अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना और अपनी जड़ों को कभी ना भूलना, सोनी बॉय की कहानी शायद यही सब सिखाती है।
उसके लिए खुद की असलियत, अपनी सच्चाई के क्या मायने हैं, सच की ये तलाश शायद कभी खत्म नहीं होती।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।